संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में।
लेकिन ये गुरुदेव का अद्भुत सिद्धांत है, उसको गहराई से उनने भी कितना समझा है, या तो वे ही जानते हैं या केवली भगवान, लेकिन इसलिए उस अरुचि को छोड़कर वो भी इसे यदि गंभीरता से सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि उन्हें भी लाभ होगा। हमारा तो परिचित विषय है, ऐसा मानकर उसकी उपेक्षा करना योग्य नहीं है। एक क्रमबद्ध पर्याय है क्या? दुनिया में जितने भी दर्शन प्रचलित हैं, उनमें अधिकांश दर्शन यह मानते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा संचालित है। यदि कोई ये कहता है कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो कोई ये कहता है कि खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाया करते हैं। लेकिन जैन दर्शन किसी ऐसी ईश्वरीय शक्ति की सत्ता स्वीकार नहीं करता है कि जिसने इस जगत को बनाया हो, जो इस जगत का संचालन करता हो और जो इसका विनाश भी करता हो, ऐसे किसी देव का स्वीकार जैन दर्शन में नहीं है। जैनियों के भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, बल्कि सहज ज्ञाता दृष्टा है। वे किसी को सुख दुख देते नहीं हैं, पर दुख दूर करने का और सुखी होने का मार्ग बता देते हैं। वे रास्ता बताने वाले हैं, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, वे हितोपदेशी हैं, हित करने वाले नहीं हैं। हित का कैसे किया जाए इसका उपदेश देने वाले हैं। वे किसी की भक्ति से खुश होने वाले नहीं हैं, किसी की उपेक्षा से नाराज होने वाले नहीं हैं। वे बीतरागी हैं और वे सारे जगत को सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने वाले हैं। ऐसे सर्वज्ञ बीतरागी हितोपदेशी परमात्मा को जैन दर्शन स्वीकार करता है। हमारे छेड़ालाकार ने तो उनके जो उत्कृष्ट शिष्य हैं हमारे तीर्थंकरों के भगवान के, उनके लिए ऐसा लिखा है कि अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। जब उनके शिष्य भी अर्घ उतारने वाले और तलवार चलाने वाले, अर्घाव तारन और असि प्रहारन, इन दोनों में समता भाव रखते हैं, तो उनके गुरु सर्वज्ञ परमात्मा दुष्टों का दलन क्यों और भक्तों का अनुग्रह ये करेंगे? हमारे भगवान भगत के बस में रहने वाले नहीं है, वे अवस भगवान हैं। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर जैन दर्शन में यदि ऐसी किसी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं किया है तो ये जगत के सारे कार्यकलाप होते कैसे हैं? इन्हें कर्ता कौन है? इसके करने में कोई व्यवस्थित पना है अथवा ऐसे ही चाहे जो चाहे जब चाहे जैसा हो जाता है? उसमें हमारे जुम्मे क्या कार्य है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य है? ऐसे जो अनेक प्रश्न हैं जो हमारे हृदय को मथते हैं। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाले जगत के कर्ता बहुत विशाल बहुमत के रूप में इस दुनिया में है, देश में नहीं सारी दुनिया में, और ऐसी मान्यता वाले जिनकी चर्चा अपने यहां कर रहे हैं सहज ज्ञाता दृष्टा भगवान की, उनके मानने वाले निश्चित रूप से उंगलियों पे गिनने लायक, माने उस तुलना में 5 अरब के जो मनुष्यों की गणना आज मानी जाती है उसमें गवर्नमेंट के हिसाब से 30-35 लाख होंगे। और वे भी कितना समझते हैं उन भगवान की वाणी को, तो वैसे शाम तक हम देखते हैं महावीर की कृपा से ये हो गया, भगवान की कृपा से ये हो गया, कोई को महावीर बच्चे दे रहे हैं, कोई को भगवान भूत भगा रहे हैं, है? कोई ने सब कुछ कर दिया है। उन 35 लाख में भी कितने लोग हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की उस वाणी को सहज रूप में, सत्य रूप में जानते हैं। ऐसी स्थिति में वातावरण तो वो ईश्वरवाद का ही जगत में है। हमारे मुंह से भी निकलता, भैया भगवान की ऐसी मर्जी थी इसलिए ऐसा होना था, हम क्या करें, क्यों? कहने का अर्थ यह है कि ऐसे वातावरण में जब तक, क्योंकि 24 घंटा हमारे दिमाग में वो हैमर होता है कर्तृत्व का भाव, जगह 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 टीवी देखें तो उसमें, सिनेमा देखें तो उसमें, अखबार पढ़ें तो उसमें, कहीं से बात करें तो उसमें, कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है और जगत का कर्ता धर्ता कोई ईश्वर नहीं है, ये बात गले उतरना इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आभीक्षण ज्ञानोपयोग चाहिए, उस तरह का निरंतर चिंतन मनन चाहिए, तब उस विपरीत धारा में ये काम हो सकता है। आप जानते हैं हिमालय से गंगा नदी निकलती है और वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, कितनी दूरी है? 1500 माइल करीब। 1500 माइल वो गंगा पानी, करोड़ों गैलन पानी बिना एक पैसा खर्च किए पहुंच जाता है, क्यों? किसी को कोई श्रम होता है? और बंगाल की खाड़ी में से एक घड़ा भरकर और गंगोत्री पर ले जाना हो तो कितना खर्चा आएगा, बोलो उदय भाई? एक घड़ा पानी ले जाना हो, लेकिन रेल मोटर का प्रयोग नहीं करने देंगे, वो गंगा जली आती है ना, दिल्ली से हम जयपुर आए तो वो कंधे पर कांवर लेकर, क्यों? जमीन पे भी नहीं रखें, लेके जाओ कहां से? बंगाल से, तुम्हारे कलकत्ते से, क्यों? गंगोत्री जाओ, कितना खर्चा आएगा, समझ लो। कहते तुम उल्टी गंगा बहाना चाहते हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि हमको अब ये उल्टी गंगा बहाने का काम करना है, ये कितने श्रम का काम है। वास्तव में तो सीधी गंगा यही है लेकिन जगत का जो स्वरूप है उसके जो बीच में ये जो काम है वो कितना गजब है, कितना महान है, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कुछ लोग इसका जवाब माने किसका, कि फिर जेनियों के पत्ते कौन हिलाता है, क्यों? कहते हैं कि उन हमारे यहां कर्म फिलॉसफी है, और ये बात सच्ची है कि जैन दर्शन की जो कर्म फिलॉसफी है, ऐसी जबरदस्त और गहरी कर्म फिलॉसफी किसी दर्शन के पास नहीं है। अद्भुत है, गजब है। इससे ज्यादा मैं उसकी महिमा क्या गा सकता हूं कि हमारे यहां जो 2 श्रुतस्कंद है, प्रथम श्रुतस्कंद और द्वितीय श्रुतस्कंद कबीरचंद जी, तो उस कर्म के गीत गाने वाले प्रकरण को प्रथम श्रुतस्कंद का नाम मिला है और भगवान आत्मा की चर्चा को द्वितीय श्रुतस्कंद का नाम मिला है, क्यों? कासलीवाल जी, हलासमल जी, है ना? हमारा सतखंडागम प्रथम श्रुतस्कंद है, पर हमारा समय साथ द्वितीय श्रुतस्कंद है, दूसरा नंबर में लगे। लेकिन इसका जवाब कि यदि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है तो कौन करता है, तो हम कहें कि कर्म करता है, इससे इसका जवाब संपन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कर्म तो किसको गाइड करता है। यशपाल जी की क्लास आपने सुनी होगी आज, नहीं अन्ना जी आके नहीं दिखाई नहीं दे रहे, घर पे सुन रहे होंगे। हमने कमरे कमरे में स्पीकर लगा दिए हैं ना, इसलिए लोग यहां आने की तकलीफ, मैं भी घर से ही सुनता हूं, तो इनसे कम से कम 25% श्रोता घरों में सुन रहे हैं, क्यों? तो क्या बात मैं कहता हूं, उन्होंने आज बताया था क्लास में कि किस पे काम करती है, जरा सोचो तो, ये गुणस्थान किसके हैं? पुद्गल के हैं, धर्म द्रव्य के हैं, अधर्म द्रव्य के हैं? आकाश द्रव्य में गुणस्थान होते हैं, सिद्ध भगवान के गुणस्थान होते हैं, क्या नहीं? मैं पूछता हूं कर्म का बंध और कर्म का उदय धर्म द्रव्य के होता है, अधर्म द्रव्य के होता है, आकाश के होता है, काल के होता है, कुदगल के होता है, तो इन पांच द्रव्यों को कौन करेगा? जीव को तो कर्म का निपटा देगा। क्यों? सवाल तो पूरे विश्व की व्यवस्था का है, सवाल तो अकेले जीव के परिवर्तन की बात थोड़ी है। इस सारे विश्व की व्यवस्था को कौन गाइड करता है? इन द्रव्यों में भी तो परिवर्तन होता है, उसे कौन करेगा? और जीव में भी, सिद्ध भगवान में तो कोई कर्म है ही नहीं, वो आठ ही कर्म नष्ट हो गए उनके, तो उनकी में भी परिणमन होगा कि नहीं होगा? द्रव्य का स्वभाव परिणमन है कि नहीं? तो उनके परिणमन को कौन करेगा, बोलो विनय बाबू? तो मेरे कहने का आशय सिर्फ संसारी जीवों की बात पर आएगी कि कर्म कर देता है, तो ये बात अकेले हमारी समस्या संसारी जीवों की नहीं है, बल्कि लोक में जितने भी पदार्थ हैं उनके परिणमन का नियामक कौन है, ये समस्या है। तो कर्म की फिलॉसफी से वो समस्या हल नहीं हो सकती, ये जवाब नहीं हो सकता है कि उनके यहां यदि कोई ईश्वर है तो वो हमारा काम कर्म करता है। कभी कभी तो मैं ऐसा भी कहता हूं कि यदि तुम्हें कर्म को ही कर्ता मानना है तो अच्छा है कि ईश्वर को जगत का कर्ता मान लो, समझदारी इसमें है। क्यों? क्योंकि अपनी चोटी किसी मूर्ख के हाथ में देने की अपेक्षा समझदार के हाथ में देना ज्यादा अच्छा है। आप लोग ही कहते हैं कि नादान दोस्त से समझदार शत्रु अच्छा होता है। अरे कर्म तो जड़ है, अचेतन है, और वो हमारा डिसीजन करे कि हम नरक में जाएं कि स्वर्ग में जाएं, कि मोक्ष में जाएं कि निबोध में जाएं, कि हम सुखी करें वो हमें दुखी करे। तो जड़ कर्म के हाथ में अपनी सत्ता देने की अपेक्षा तो चेतन ईश्वर के हाथ में सत्ता देना ज्यादा अच्छा है। वे बुद्धिमान ज्यादा हैं कि जिन्होंने अपनी चोटी उस भगवान के हाथ में तो सौंपी जिसको वो सर्वज्ञ मानते हैं, दयालु मानते हैं और न मालूम कितना महान मानते हैं। तो ये जवाब कि हमारे यहां वो काम कर्म करेगा, ये सही नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुतों को ऐसा लगता है कि वैसे मैं कर्म फिलोसफी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए तो बताया कि हमने तो उसको पहला सूत्र स्कंद कहा है, तो पंडित टोडरमल जी ने समय सार की टीका नहीं लिखी, गोमर सार की टीका लिखी है। क्यों? समय सार की टीका तो उनके शिष्यों ने लिखी है, जयचंद जी छावड़ा उनके डायरेक्ट शिष्य थे, उनकी सभा के दैनिक श्रोताओं में से थे। आपको मालूम है कि नहीं, जब पंडित टोडरमल जी साहब बड़े मंदिर में प्रवचन करते थे तो जयचंद जी छाबड़ा फागी के रहने वाले थे और वो व्यापार के काम से जयपुर आया करते थे, तो उनके व्याख्यान में जाते थे और उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए फिर वो अनेक दिनों यहीं रह जाते थे, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। क्या? तो उन्होंने की है। कहने का मतलब यह है कि हम कर्म फिलोसफी से इंकार नहीं करते हैं, लेकिन वो ईश्वरवाद के जगह नहीं ले सकती है, वो क्रमबद्ध पर्याय का स्थान नहीं ले सकती है। हमारे यहां तो डंके की चोट कहा है कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। ये कांजी स्वामी ने का बनाया हुआ नहीं है, ये किसी कांजी स्वामी के भगत का बनाया हुआ भी नहीं है। क्यों? हमने जब कांजी स्वामी का नाम नहीं सुना था तब भी ये भजन हमारे इस देश में गाया जाता था, जैसे गांधी जी गाते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, उसके साथ में हमारी जैन समाज में ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। क्यों गाते थे? क्या नहीं कि भाई मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूं, करता धरता आत्म राम नहीं हूं, क्योंकि कैसा फिर कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? ईश्वरवादी लोग जो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एक ही हेतु देते हैं, पढ़ लेना आप जितना पढ़ना हो, मैंने उसके सैकड़ों पेज पढ़े, हजारों पेज पढ़े, सब है ना, न्याय प्रथमा में, न्याय मध्यमा में, न्याय तीर्थ में, सारा ईश्वरवादी तो है, उसका मनन खंडन भरा है। कार्यत्वात हेतु है वहां पर, संस्कृत भाषा में बोलते हेतु क्या है, कार्यत्वात, ये जगत एक कार्य है, इसलिए इसका बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए, पर वो कौन हो सकता है ईश्वर के अलावा, इस तरह सिद्ध करते हैं, क्योंकि जगत एक कार्य है ना, कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है कि काम है ना, कहा ये काम है तो जो कोई करने वाला चाहिए, तुम जगत को कार्य तो मानते हो जैनी लोग, और कहते हो करने वाला नहीं है, गजब करते हो। इधर जब किसी भरी सभा में हंसी उड़ाते हैं ना, तो हंसी का फब्बारा छूट जाता है, कि जो ऐसे दार्शनिक हैं क्या, कि बेटा को तो मानते हैं लेकिन बाप नहीं मानते, तो बाप के बिना बेटा किसका। सरदार जी बोलते कि साहब पूरे दिन आप क्रमबद्ध पर्याय ही चलाओगे कि कुछ और भी चलाओगे। मैंने कहा आज कुछ नहीं कह सकता, इतनी चलती है जितनी वो चलेगी उतनी मैं चलाऊंगा, इनको जो चिंता है कि वे दूसरी किताब चलाए तो मैं उसके बाद तुम्हें का इंतजाम करूं। बहुत गंभीर विषय है, और फिर कभी अपन इसको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं पूरे कुछ भी छोड़े बिना पूरी तरह से इसको लेना चाहता हूं, इसलिए मैं कोई समय की मर्यादा में नहीं बंधना चाहता, कितने दिन चलेगा, जब चलेगा जब तक चलेगा। तो क्या बात चल रही है कि भाई इस जगत एक कार्य है, कार्य तो मानते हो तुम, और कहते करने वाला नहीं है, तो करने वाला नहीं है और कार्य है, ऐसा कभी होता ही नहीं। बच्चा है बेटा है तो बाप होता ही है, पत्नी है तो पति होता ही है, क्योंकि वो सापेक्ष शब्द है, कर्म शब्द कर्ता की अपेक्षा रखता है, अब ख्याल में है ना, करता है नहीं और कर्म मानते हैं जो कहते हाँ बात तो सच्ची है, हाँ तो बात तो सच्ची है। मैं नाम नहीं लेता किन्हीं का, लेकिन जब उनकी लच्छेदार भाषा में आप सुनो कि जैनी क्या है, वो इनका सिद्धांत क्या है, पहला तो यही कि कर्म तो है लेकिन कर्ता नहीं है, और ये बात सत्य भी है और झूठ भी है, ऐसा इनका साधवाद है, ऐसा अकर्तावाद है, उसी को कहते हैं एक क्षण में है और एक दूसरे क्षण में कहते हैं नहीं है, एक क्षण में कहते हैं नित्य है, दूसरे क्षण में कहते हैं अनित्य है। ये जैनी लोग मुरादाबादी लोटा जैसे हैं, मुरादाबादी लोटा समझते हैं ना, बिना पहंदी का, कि चाहे जहां घुड़क जाए, जहां जरा वजन पड़ा उधर कोई ढुलक जाने वाले हैं, ये कोई किसी डिसीजन पे पहुंचते ही नहीं है। कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है, और है और ना के बीच में जो कछु है सो है। ना ना कहते ना कहते क्या है, कहाँ है कि नहीं है, कि नहीं है, कि है भी और नहीं है भी, कि है भी और नहीं है भी, कि आवाज से कह नहीं सकते, कि कह नहीं सकते हो कि नहीं, कह तो सकते हैं कह भी, अनिर्वचनीय भी है और बचनी भी है, लेकिन एक जगह टिकते ही नहीं है, टिके कहां, टिकने लायक जगह हो इनके पास तो टिके। लोगों को लगता है कि बिल्कुल सच्ची बात है, क्यों, लेकिन जैन दर्शन की जो गहराई है उसको बैरनाथ शाह का उल्लेख किया था ना अभी कपूरचंद जी ने, जहां और दर्शन की अहिंसा समाप्त होती है वहां जैन दर्शन की अहिंसा वहां से शुरू होती है। दुनिया कहती प्रेम करो प्रेम करो प्रेम से रहो, ये अहिंसा है, देश मत करो, ये कहते ये प्रेम से रहना ही सबसे बड़ी अहिंसा है, कहता कि नहीं कहता बोलिए, वो कहते हैं कि सब भगवान पे छोड़ दो, तुम तो करे कर्मण्ये वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, सब भगवान पे छोड़ दो, पर ये कहता है कि नहीं नहीं कोई भगवान पे मत छोड़ना, भगवान ने अपना ही कार्य छोड़ दिया, तेरा क्या करेंगे, ये तुम्हें तो अकर्ता भगवान है। मैंने तो अपनी पूजन की पंक्ति में लिखा है कि मैं आज तक संसार में क्यों रखड़ा, कि भगवान के भरोसे पड़ा रहा, इसलिए है ना क्या पंक्ति, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, इसलिए हो गई थी क्यों, पहली गलती, नंबर एक की गलती, हे बीत राग सर्वज्ञ प्रभो तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रूवर 84 के चक्कर खाना। तो क्या गलती की पहचानने में, कि सबसे पहली गलती देखो कि करुणा निधि तुमको समझना, भगवान तुम्हें मैंने करुणा निधि दया का सागर समझा, नंबर एक गलती।
क्या कह रहे
क्या दिनेश भाई, क्योंकि टोटा मजी ने लिखा है कि कर्तृत्वादि जो विशेषण है अन्न मत के समान है, वो अरहंत पे भी लगाता है पर भक्ति करता है, भगवान अरहंत इसका देने वाले, ऐसा करने वाले, ऐसा करने वाले, ऐसा करने वाले, ये तो अरहंत का आवरणवाद है। तो करुणा निधि तुमको समझ नाथ, भगवान भरोसे खड़ा रहा और भरपूर सुखी तुम कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, पर आज समझ में आया है
क्या
कि वीतरागता धर्म है, कि धर्म तो वीतरागता है और राग भाव में धर्म मानना जनमत में
तो का
क्यों ठीक है। भगवान को जब करता ही नहीं है, अकर्ता है ना, कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन तो है ना, कोई भी विद्वान आचार्य पंडित ये कह सकता है कि जैन दर्शन कर्तावादी दर्शन है? ये तो सब मानते हैं ना कि अकर्तावादी दर्शन है, तो कौन करेगा फिर हमारा कल्याण, कौन करेगा हमारा कल्याण? भगवान के भरोसे नहीं है तो किसके भरोसे रहे हम? क्यों अपने को आप भूल के हैरान हो गया। गुरुदेव को बहुत प्रिय था ना ये बात, तू जो हैरान हुआ है वो स्वयं को भूल कर हुआ है और अपने आप हुआ है, किसी ने तेरे को हैरान नहीं किया है। कर्म बिचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की। कहां गए कर्म तो बेचारे हैं, तू कर्म को भगवान मान के बैठ गया है? क्यों विदरेश्वर मान के बैठ गया? तो फिर कैसे होता है इस जगत का प्रणमन, कौन करता है इस जगत का प्रणमन? तो जैन दर्शन कहता है होता स्वयं जगत परिणाम, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या क्या गाया केवल ज्ञानी ने? क्या बताया सर्वज भगवान ने दिव्य ध्वनि में स्व इंद्रों की उपस्थिति में, क्यों गणधर देव की उपस्थिति में, चक्रवर्तियों की उपस्थिति में, क्या की घोषणा की? प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, क्यों हर द्रव्य में छह ही द्रव्यों में, और जिसका काम क्या है कि 24 घंटा द्रव्यते रहना, बदलते रहना, चलते रहना। क्या सूरज को कौन चलाए? आप बहुत बड़े व्यवस्थापक हो ना, करता हो ना, चलाने की व्यवस्था करो ना सूरज को, वो तो अपने आप चलता है। तो सूरज में एक चीज तो जगत में अपने आप चल सकती है ना, तो दूसरी क्यों नहीं चल सकती? मालूम जैनियों ने एक ही तर्क दिया है ईश्वरवाद के विरुद्ध में बहुत मजबूत, कि ठीक है तुम कहते हो जगत एक कार्य है इसलिए करता चाहिए और इसलिए वो ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर को किसने बनाया? वो भी तो कार्य है कि नहीं, तो अगले ईश्वर ने, तो उसे किसने बनाया? कि अगले ईश्वर ने, कि उसे किसने बनाया? कि अगले ईश्वर ने। कहां तक जाओगे अनवस्था नाम का दोष खड़ा हो जाएगा, लेकिन अंत में जाके कहोगे वो स्वयं बन गया। तो जब एक वस्तु स्वयं बन सकती है तो दूसरी व्यक्ति स्वयं क्यों नहीं बन सकती है? स्वयं बनना की का सिद्धांत आ गया ना, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य सर्व प्रभुता संपन्न पदार्थ है और उसमें एक ऐसा गुण है कि जो 24 घंटे वो परिवर्तन होता ही रहे, इसके कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो वो है ना कौन, वो ही करता जो प्रणवनशील है, माने वो स्वयं करता है, अपने कार्य का कर्ता स्वयं है। क्यों हमारे घर की सफाई कौन करे? कितनी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान गंदा है, गंदा है, गंदा है, गली गली गंदी है, गली गली गंदी है, पर हर आदमी के माथे पे 3 बल पड़ते हैं क्या कि देखो अमेरिका जाओ कैसा एकदम नीट एंड क्लीन सारा देश बगीचा जैसा दिखता है, और हिंदुस्तान जहां जाओ गंदगी गंदगी, क्या करें क्या करें, सब चिंता करते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। विनोबा भावे ने लिखा कि सब लोग अपने दरवाजे के सामने के हिस्से की सफाई कर लें तो सारा देश साफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारा देश साफ हो जाएगा। लेकिन हमें तो सफाई करने के लिए दूसरे चाहिए, हमें तो सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी चाहिए, इसलिए हमारा देश गंदा है। अमेरिका में जाके देखो कौन करता है सफाई, सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। नाराज मत होना, मैंने अमेरिका में अच्छे अच्छे करोड़पति देखे हैं जो अपने हाथ से चाय बनाते हो चाहे बर्तन धोते देखे हैं। क्या एक एक आदमी ऐसा है कोमलचंद जी कि 50 कोमलचंद जी बने उसमें, समझ गए ना आप, फिर भी वो रसोई में खड़े होकर के बर्तन धोते मैंने देखा। गोदका जी को देखा, दूसरे की किसकी बात करूं, नौकर मिलते ही नहीं। सबको अपना कमरा साफ करना पड़ता है, सबको अपनी लैट्रिन साफ करनी पड़ती है, सबको अपना घर साफ करना पड़ता है, सबको अपने सामने की घास काटनी पड़ती है, बाहर तक की सड़क तक की सफाई करनी पड़ती है। आपने अपने घर के सामने की घास नहीं काटी तो आप पर $200 जुर्माने हो जाएंगे। क्या तो गवर्नमेंट का आदमी आएगा और घास काटेगा और उसकी कटवाई भी तुमसे ली जाएगी, तब देश साफ है। कैसे ऐसा, सब करते हैं अपना अपना घर साफ, सब करते हैं तो सफाई है। कोई काम वास्तव में पूरी तरह सफल तो तब ही हो सकता है कि जब सब अपना अपना काम करें, एक के माथे सबका काम सौंपे, तो ऐसी ही अव्यवस्था रहने वाली है। ये समझ में नहीं आता, पर को कर्ता माने तो हमने कर्ता माना, और अपना कार्य हम स्वयं करें तो हम कर्ता नहीं है, कर्म तो है वो कर्ता नहीं है। उसका दबाव है कौन से का दबाव, कई जैनी लोग कर्म तो मानते हैं, कर्म माने कार्य तो मानते हैं लेकिन कर्ता नहीं मानते। अरे कब कहते हम पर कर्ता नहीं है, हम ये कहते हैं कोई एक कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो इनका कार्य बिना करे हो जाएगा। क्यों कि हम कब करेगा बिना करे हो जाएगा, तो स्वयं का स्वयं करेगा ना। बात तो जरा अटपटी है लेकिन कहीं ना समझ में तो आएगी कि हम अपने घर की लैट्रिन साफ करना हो तो भंगी आए तो साफ करे, और नहीं तो 10 दिन तक गंदी पड़ी रहे। अपनी तो यही हालत थी ना, जब से अटैच लैट्रिन बाथरूम बने हैं तब से हम लोग भी सीख गए हैं सफाई करना। क्यों नहीं तो यही था कि नहीं था, मगर बोलो नहीं तो भंगी आए तब साफ करे। तो मैं ये कहता क्यों लैट्रिन को हाथ कौन लगाए, तो मैं कहता जब भंगी आए तब सोसाए, तू सोसो भी मत, तो किसी के भरोसे रहोगे तो क्या हालत तुम्हारी होगी, सोचो तो। तो एक काम वही गंदगी का, उसे साफ करने का तुम अपने हाथ से कर सकते हो तो यहां है तो कर सकते हो, और यहां पहुंची तो नहीं कर सकते, कहां से लाए, बोलो करना पड़ता है कि नहीं। आखिर तो अपनी गंदगी साफ हमें स्वयं ही करनी पड़ती है ना, कि दूसरे को करना पड़ती है। तो राग देश की जो अपनी गंदगी है वो भी हमें स्वयं ही करनी पड़ती है, करते हैं तब ही होता है। जैन दर्शन ये कहता है कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता। क्या जगत स्वयं परिणामशील है, इसकी चिंता करने की जरूरत क्या है, दूसरे को खोजने की कर्ता खोजने की जरूरत क्या है। क्यों तो ये क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ ये है कि जगत में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रत्येक द्रव्य अपने पर्याय रूप कार्य का कर्ता स्वयं है। कोई शास्त्र में लिखा है कपूर चंद जी है, अमृतचंद ने लिखा आत्मख्याति में, क्यों दिनेश भाई बोलो बोलो क्या कहां लिखा, यह परिणमति स कर्ता यत परिणामम भवेत तत कर्मम यह परिणति क्रिया सा। क्या यह परिणमति सा कर्ता, कि जो परिणमित होता है वो ही करता है और जो वो परिणमन हुआ वो ही कर्म है और जो परिणति हुई वो ही क्रिया है। और न वस्तुतया भिन्नम, और ये वास्तव में भिन्न है ही नहीं, तीनों एक ही हैं, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों एक में ही घटते हैं, दो पदार्थ में घटते ही नहीं। और समय सार पढ़ाओ तो व्यापक व्यापक भाव के समझे बिना कभी आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता है। मैं गया था ना कल बद्यानंद जी महाराज के पास, तो उन्होंने कम से कम 10 दफे कहा कोई व्यापक व्यापक भाव को समझता ही नहीं है, कोई गे गायक भाव को समझता ही नहीं है। व्यापक व्यापक भाव को समझे बिना आत्मा का ध्यान हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। कर्ता कर्म भाव को समझे बिना आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता है। गे गायक संबंध को समझे बिना आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता है। मेरे साथ सेठी जी थे, पादमी जी थे, और उन्होंने कहा 10 दफे कहा, और 19 तारीख से समय सार पर प्रवचन करने वाले हैं 7 दिन। या परिणमति सकर्ता, प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, इसलिए किसी दूसरे को परिणमन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात तो जैनेतर दर्शनों के संदर्भ में हुई। अब अपनी समस्या तो ये है कि जो हम जैनी हैं और उसमें किर्मद पर्याय का वास्तविक स्वरूप है, वो हमारी समझ में क्या है आना चाहिए। इसलिए मैं एक बात और कहता हूं कि जैन दर्शन में अकर्तावाद को माना है, तो समय सार जैसे ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार लिखा कुंद ने, जिसमें 76 गाथाएं हैं, कोई भी अधिकार में 76 गाथा नहीं है। और समय सार में तो ये कहा कि निश्चय नए से जाने हुए 7 तत्व समय दर्शन है, और 7 तत्वों का वर्णन करूंगा मैं, जीव अजीव आश्रव बंध समय निद्रा मोक्ष। इसमें कर्ता कर्म तो जीव है कि अजीव है, इसका नाम ही नहीं आता जबरदस्ती बीच में। जीव अजीव का वर्णन करो क्यों, फिर आश्रव का वर्णन होना चाहिए था, फिर बंध का वर्णन होना चाहिए, संवर का बंध निद्रा का, भेद करना है तो पुण्य पाप का कर दो, लेकिन कर्ता कर्म से क्या लेना देना है। कर्ता कर्म अधिकार बीच में और सबसे बड़ा, खैर उसकी बात फिर कभी करूंगा क्यों है वो, लेकिन मैं ये कहता हूं 76 गाथा में एक भी गाथा ऐसी नहीं है कि जहां ये लिखा हो कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अब आप अटपटेगा क्या कहना चाहता है ये पंडित, तो क्या कुंद ईश्वर को जगत का कर्ता मानते थे, तो फिर क्यों नहीं लिखा? जब कर्ता कर्म की बात कर रहे हैं तो इसकी चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि और जितने भी ग्रंथ हैं, खासकर न्याय ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ, उसमें ईश्वरवाद की बड़ी बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हैं जो कई पेजों तक जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने समस्या उनकी नहीं है कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, मेरे सामने जो मेरे शिष्य बैठे हैं, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे मुनि, वो कुंद कहते हैं, वो सब एक मन से कहते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब मैं उनसे ये क्या कहूं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, बोलो, फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी प्रॉब्लम दूसरी है कि क्या कि मेरे सारे शिष्य ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते हैं, लेकिन छोटे मोटे ईश्वर खुद ही बन बैठे कोई अपने गांव का करता है, कोई अपने देश का करता है, कोई अपने प्रांत का करता है, तो कोई अपने घर का करता है, क्यों, तो कोई अपने दुकान का करता है, कोई धंधे का करता है, कोई रोटी बनाता है, कोई क्यों, कोई खाता है, ऐसे इस छोटे छोटे कर्ता ईश्वर स्वयं ही बन बैठे हैं, या दूसरे पर ही मानते हैं मेरे, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा भला किया। तो ये जो अज्ञान है मेरे शिष्यों में, मेरे को तो इस अज्ञान के विरुद्ध लड़ना है, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, पूरे कर्ता क्रम अधिकार में। ऐसी ही बात यह है कि यहां एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इस सभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये मानता हो कि ईश्वर जगत का कर्ता है। बोलो, आपको तो हाथ उठवा दूं, नहीं ऐसा नहीं करूं, घबराना नहीं, सब एक स्वर से मानते हैं ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। तो इसके बारे में 2 मिनट बोल करके भी मैं अपना समय क्यों खराब करूं? मेरी समस्या तो ये है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है और उसका क्या स्वरूप है जैन दर्शन में, ये हमारे तो ये सब लोग तो ये जानना चाहते हैं, क्यों पादमी जी, इसलिए हम उसकी चर्चा क्यों करें। हम तो इसकी चर्चा करेंगे कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। क्या कहते हैं कि जगत में जो भी कार्य हो रहा है तो एक कर्म और कार्य ये दोनों एक अर्थ में यहां कहा जा रहा है। वो कर्म माने ज्ञान वर्ण आदि कर्म नहीं लेना, वो कार्य प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी द्रव्य में हो रहा है तो वही द्रव्य उसका करता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो द्रव्य करता है कि कोई दूसरा है, समस्या ये है कि उसको नक्की कौन करता है कि कल ये होगा, कि कल सुबह किसका प्रवचन होगा, कल शाम को आज कपूरचंद जी का हुआ है वो कल किसका होगा, ये नक्की कौन करता है, ये हम जानना चाहते हैं। क्यों हावड़ा जी मैं करता हूं, पारण जी मैं करता हूं, क्यों कौन करता है बोलो, बोलो देवालय जी कौन करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, घबराना नहीं, शांति से सुनना। भगवान महावीर के समोह शरण में कोई ये प्रश्न करता कि 2 अगस्त को शाम को पंडित हुकुमचंद के प्रवचन के पहले कौन प्रवचन करेगा तो वे बता पाते कि नहीं, क्या सोचना? आप सब जैनी यहां बैठे हो, क्या ज्ञान उन्हें था क्या नहीं, वे बता सकते थे कि नहीं? क्यों बाबू साहब बता देते तो उन्हें पता है कि ये करेगा, इसका मतलब कौन करेगा वो तो नक्की है, और ये मूर्ख बांधता है मैं नक्की करूंगा, मेरे हाथ में है मैं नक्की करूंगा। तेरे हाथ में मूर्ख क्या है, तेरे को पता नहीं है, तुम तो सिर्फ जानेगा, तुम तो सिर्फ विकल्प करेगा, ख्याल में है ना। तूने तो ये भी नक्की किया था ना कि पंडित हुकुमचंद का प्रवचन सुबह 8:15 होगा, क्यों? और भगवान महावीर का केवल ज्ञान में क्या झलका था कि वो 9:15 शुरू होगा, क्यों? तू उसको मूर्ख ने तो ये किया था ना व्यक्ति, क्या बबलू किया था ना, जान सकते हैं कि नहीं? तो क्या क्या ऐसी छोटी छोटी बातें भगवान महावीर जानते कि तो केवल ज्ञान में बड़ी बड़ी बातें जानते होंगे, क्यों? सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जो सब जाने उसे कहते हैं ना। और शास्त्र में ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि जिससे ये सिद्ध होता है कि भविष्य की बातें सर्वज्ञ सब जानता है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि ठीक है तुम बहुत तर्क वितर्क तर्कबाज हो ना। जब मैं पढ़ता था ना मुरैना विद्यालय में मक्खनलाल जी के पास, तो मेरे क्लास के सब लोग थे ना, तो मेरे से कहते थे कि तुम ये बहुत तर्कबाज है, क्योंकि ज्यादा घी खाता है ना। मुझे तो पता नहीं कि मैं ज्यादा घी खाता था कि नहीं खाता था, अब तो बंद हो गया बिल्कुल, लेकिन जब ज्यादा खाया तब तो मैं सीखिया पहलवान था। क्यों तो? एक जगदीश करके था, वो हमारे में से 6-7 वर्ष बड़ा था, लेकिन मेरी क्लास में ही था, तो वो ये कहता था। क्यों तो आगम में कहीं लिखा है, शास्त्र में कहीं क्रमबद्ध पर्याय की बात लिखी है क्या? तो मैं मालूम क्या जवाब देता हूं कि क्या बताऊं कहां लिखी है। कोई भी शास्त्र दिगंबरों का, श्वेतांबर का, थानक वासियों का उठाकर जाके देखना, ऐसा उठाना शास्त्र को, और आंख बंद करके ऐसा खोलना और उस पेज को पढ़ना, वहां क्रमबद्ध पर्याय लिखी होगी। बोल क्रमबद्ध पर्याय जिनागम के हर पेज पर लिखी है। कपड़ा आता है ना बाजार में सनफ्राइज्ड, क्यों कि जो सुकड़ेगा नहीं, तो उसके हर भर मीटर पे लिखा रहता है। पहले तो क्या था कि एक जगह छाप देते थे अंत में, अब वो कपड़ा बेचा बेचारे गरीब ने तो 2 मीटर बेच दिया, तो बाकी स्थान पे कहां लिखा, दिक्कत है ना। अब उसकी किनारी पे लिखा सनफ्राइज 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 सनफ्राइज, लाल इमली लाल इमली लाल इमली लाल इमली लिखा रहता क्या नहीं पूरे किनारे पर। ऐसे एक क्रमबद्ध पर्याय ऐसा विषय है कि उनने किसी एक किताब में नहीं लिखा, हर किताब के हर पेज में हर पंक्ति में क्रमबद्ध पर्याय लिखी है, लेकिन तेरे को देखने की दृष्टि चाहिए। अभी निकाल के बताऊंगा, हर पेज में लिखी है क्रमबद्ध पर्याय, और आपको आपका दिल स्वीकार करेगा कि हर पेज में लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन देखने की दृष्टि चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये तो क्रम नियमित पर्याय लिखी है, क्रमबद्ध नहीं लिखी, क्रमबद्ध बताओ, तो काम नहीं चलेगा। क्यों? कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है ना, जो जो देखी बीत रागने सोसो होसी बीरा रे, अनहोनी कब हूं नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। लिखा के नहीं लिखा कि जो जो होना है वो नक्की है, लिखा के नहीं कि साहब ये तो लिखा है लेकिन क्रमबद्ध पर्याय कहां लिखी? अरे क्यों क्रमबद्ध पर्याय कहां लिखी? मैंने कहा साहब ये मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। क्यों कहा क्यों साहब तुमने? कि नहीं साहब मैं तो नहीं जान से मारने की बात कही नहीं। कि क्या कहा था? मैं तो ये कहा था गोली से उड़ा दूंगा।
अबे झूठ बोलता है, जान से मारने की कहां कही थी, तो गोली से उड़ाने की बात कही थी।
ऐसा कोई तर्क करे तो उसके मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अनेक भाषा में शास्त्र है, अनेक विचारों में है, जो क्रमबद्ध पर्याय की थीम है। क्या कि सब कुछ निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये थीम उस पंक्ति में से निकलती है कि नहीं? यदि निकलती है इसको माने तो जिनवाणी के हर पेज में क्रमबद्ध पर्याय लिखी है, जिसे मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज सब घंटी बज गई।